ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड जाएंगे। वे मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास का दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी ट्रैक और बाइक रैली को रवाना करेंगे और हरसिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। हजारों श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के देवी देवताओं के शीतकालीन प्रवास स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ ही गृह प्रवास पर्यटन व्यापार में तेजी लाना है। सरकार ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के विकास को मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि हेमकुंड साहिब रोपवे को भी विकसित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। टीकाकरण इस कार्यक्रम का प्रमुख क्षेत्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में इन रोपवे के निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं का समय बचेगा बल्कि उनकी यात्रा भी अधिक सुगम होगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमरीका बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है जो भारत के हितों के अनुकूल है। डॉ जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमरीका की विदेश नीति में बदलाव अपेक्षित था और ये कई मायनों में भारत के हित में है। विदेश मंत्री कल शाम लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में भारत का उदय और विश्व में इसकी भूमिका विषय पर एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉ जयशंकर ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 यात्रा पर है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4% से दोगुना होकर 48.8% हो गया है। बजट के बाद लोगों में निवेश विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 10 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है जबकि 10 और कॉलेजों के लिए योजनाओं पर काम जारी है। डॉ मांडविया ने रोजगार से जुड़ी पहलों पर आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 17.1 करोड़ नौकरियां सृजित की गईं, जिनमें पिछले वर्ष 4.6 करोड़ नौकरियां शामिल हैं। तेलंगाना में मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर विधानसभा परिषद के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चिन्नामेल अंजी रेड्डी ने कांग्रेस के वी नरेंद्र रेड्डी को 5,000 से अधिक मतों से हरा दिया। विधान परिषद के स्नातक सीट के लिए 27 फरवरी को मतपत्रों के जरिए वोट डाले गए थे। इस सीट पर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी जीवन रेड्डी का कब्जा था। 27 फरवरी को विधान परिषद की 3 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार व्यापार शुल्कों में बढ़ोतरी के विषय में प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार है। ट्रंप द्वारा सभी चीनी वस्तुओं पर शुल्क में वृद्धि किए जाने के बाद दुनिया की 2 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं व्यापार युद्ध के करीब पहुंच गई हैं। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी कृषि उत्पादों पर 10 से 15% शुल्क लगा दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के दूतावास ने कहा है कि अगर अमरीका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई अन्य युद्ध हो, चीन इसके लिए अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के एक बाजार में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि खुजदार के नाल बाजार में खड़ी एक मोटरसाइकिल में विस्फोटक लगा हुआ था। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि घायलों का इलाज किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल रात लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 9 मार्च को दुबई में होने वाले फाइनल मैच में न्यूजीलैंड का सामना भारत से होगा। इधर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में ओडिशा एफसी ने कल जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमशेदपुर एफसी को 3-2 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज हैदराबाद एफसी का सामना पंजाब एफसी से शाम 7:30 बजे हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।